संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 3 जुलाई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं: कोविड-19 महामारी से वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गहरा असर, युद्ध विराम की वैश्विक अपील के समर्थन में सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव, महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर, भड़काऊ अपुष्ट या गलत जानकारी व सूचनाएं आगे बढ़ाने से पहले ठहर कर सोचें, जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सघन अभियान, और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके भी आप ताज़ा समाचार खुद ब खुद हासिल करते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गहरा असर पड़ा है और दुनिया अनेक मोर्चों पर संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कोविड-19 से उपजे हालात के बारे में गुरुवार को सुरक्षा परिषद को अवगत कराते हुए कहा कि आज लोगों की जिंदगियां बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षा के स्तंभों को मजबूती से खड़ा करना असल चुनौती है। इस साल के अंत तक 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भुखमरी के कगार पर पहुंचने की आशंका है। 1 अरब से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नियमित टीकाकरण सेवाओं में अभूतपूर्व व्यवधान आया है, जिससे खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों के व्यापक स्तर पर फैलने का खतरा पैदा हो गया है। UN प्रमुख ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दुष्परिणाम उन देशों में भी देखे जा सकते हैं जिन्हें आमतौर पर स्थायित्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पहले से ही हिंसक संघर्ष से पीड़ित या फिर उससे उबर रहे देशों में ये और भी गहरे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट से सामाजिक आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं जिनसे तनाव बढ़ा है। साथ ही जिन देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां इस चुनौती से पुख्ता ढंग से नहीं निपट पाईं, उन देशों में सार्वजनिक संस्थाओं में भरोसा घटा है। UN प्रमुख ने कहा कि महामारी से मानवाधिकारों के लिए पहले से ही मौजूद चुनौतियां और ज़्यादा गहरी हुई हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों के लिए उठाए गए उपायों में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग देखा गया है। सर्वसत्तावाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मीडिया, नागरिक समाज व अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित हो रही है। लोक लुभावन वादे करने वाले और राष्ट्रवादी नेता पहले से ही मानवाधिकारों को कमज़ोर करना चाह रहे थे और अब इस महामारी ने उन्हें दमनकारी उपायों के लिए एक बहाना दे दिया है। इस बीच सुरक्षा परिषद ने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की वैश्विक युद्ध विराम की पुकार को बुधवार को अपना समर्थन देते हुए एक मत से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें युद्धरत पक्षों से कम 90 दिनों के लिए हिंसा रोकने का आह्वान किया गया है ताकि प्रभावितों तक जीवनदायी मदद पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने सचेत किया है कि अगर दुनिया ने विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के खिलाफ असरदार कार्रवाई अभी नहीं की तो फिर इस बीमारी और उससे उपजने वाली मंदी अनेक वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार में व्यवधान का सबब बन जाएगी। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भी कहा है कि कुछ देश कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में गंभीर नहीं हैं, इसलिए उनके सामने एक कठिन और लंबा रास्ता है। कोविड-19 से संबंधित विभिन्न खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
5 संभावित वैक्सीन रिसर्च के दूसरे चरण में है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही एक अन्य वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में पहुंच गई है। जिनीवा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल ऑफिसर एना मारिया हेनाओ रेस्ट्रेपो ने बताया, किसी तयशुदा सीमा में हमें वैक्सीन का मिलना या ना मिल पाना अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छी बात यह है कि आपसी सहमति और सहयोग से बहुत काम हो रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है और हर दिन एक नई उम्मीद बनती है। मेडिकल ऑफिसर एना मारिया हेनाओ रेस्ट्रेपो के शब्द। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,05,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है और 5,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका, भारत, ब्राजील और अन्य देशों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे चिंतित यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेसिस ने चेतावनी दी है कि अभी ये बीमारी खत्म होने के नजदीक भी नहीं है। आने वाले महीनों में देशों के लिए सबसे अहम सवाल यही होगा कि इस वायरस के साथ किस तरह जिया जाए। यही नई सामान्य स्थिति, न्यू नॉर्मल है। इस बीच दुनिया के मौजूदा हालात और कोविड 19 की बाद की दुनिया में पुनर्बहाली के रास्ते पर भी विचार विमर्श चल रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने महिला अर्थशास्त्रियों के साथ हाल ही में एक बातचीत में निकट भविष्य की एक निराशाजनक तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि चरम गरीबी और भुखमरी में व्यापक बढ़ोतरी होने की आशंका है। विकासशील देशों में सार्वजनिक खर्च की मांग एक ऐसे समय में बढ़ रही है जब टैक्स, निर्यात, धन प्रेषण से प्राप्त होने वाले राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि उनका प्रयास इस संकट से उबरने के लिए वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करना और पुनर्बहाली के लिए रास्ता तैयार करना है। 50 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें आगे बढ़कर एक ऐसे साझा प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि वैश्विक नकदी, कर्ज अदायगी की चुनौतियों, गैर कानूनी वित्तीय लेन देन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।
विश्व जनसंख्या स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की 2020 की एक प्रमुख रिपोर्ट में बाल विवाह, लिंग पक्षपाती सेक्स चयन यानी लड़का लड़की में भेद करके लड़कों को प्राथमिकता देना और महिलाओं व लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य प्रथाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल लाखों लड़कियों को ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है जिनसे उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचता है और उनके परिवारों, दोस्तों व समुदायों को इस स्थिति की जानकारी होती है और उनकी सहमति भी। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में UNFPA की लैंगिक मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी शोभना बोयल से बातचीत की।
UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, क्या सार है इस रिपोर्ट का, किन प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है इसमें?
रिपोर्ट में 19 कुप्रथाओं की पहचान की गई है, जैसे कि दहेज से जुड़ी हिंसा या फिर वो अपराध जो हम ऑनर के नाम पे सुनते हैं कि की जाती है और आमतौर पे जिन्हें ऑनर किलिंग कहा जाता है। कुल मिला के रिपोर्ट में उन सभी कुप्रथाओं पे गौर किया गया है जिनसे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। खास तौर पे रिपोर्ट 3 प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो व्यापक और निरंतर है। वो है बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन जो बेटों को ज्यादा महत्व देने से जुड़ी हुई है, और फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जिसे हम हिंदी में महिला खतना कहते हैं।
जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में विशेष रूप से इन 3 कुप्रथाओं को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, इस बारे में भारत के आंकड़े क्या कहते हैं और इससे निपटने में अब तक क्या प्रगति हुई है?
3 कुप्रथाओं को जिनका वर्णन मैंने किया है उनमें से बाल विवाह और जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। महिला खतना भारत में एक सीमित रूप से कुछ प्रांतों में प्रचलित है। पिछले एक दशक में विश्व स्तर पर और भारत में बाल विवाह की व्यापकता में काफी गिरावट देखी गई है, और अगर हम नेशनल डेटा को देखें जो कि रिपोर्ट में भी कोट की गई है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उनके आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 27% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले शादी करती हैं। एक दशक पहले यही दर 47% पर थी। भारत की प्रगति ने पूरे दक्षिण एशिया के बाल विवाह के दर में 50% की गिरावट में योगदान दिया है। तो फिर हम देखते हैं कि बाल विवाह में काफी हद तक भारत में गिरावट देखी गई है। दूसरी जो कुप्रथा की बात की गई है इस रिपोर्ट में वो है जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन, और रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है, इसके आंकड़े भी दिए गए हैं, वो भी नेशनल डेटा पे ही बेस्ड है, पर मैं जो मोस्ट रिसेंटली रिलीज डेटा है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की डेटा है सरकार की, उस पे गौर करना चाहूंगी। उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 1000 लड़कों पे 899 लड़कियां पैदा हो रही हैं, और जो स्वाभाविक जन्म के समय का लिंग अनुपात माना जाता है वो 950 लड़कियों का पैदा होना, ये दर स्वाभाविक माना जाता है। तो अगर हम देखें तो 899 काफी गैप है 899 में और 950 या 950 में। पिछले साल के आंकड़ों से अगर हम इसे कंपेयर करें तो हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, क्योंकि पिछले साल 896 था ये दर 896। तो पूरे देश भर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ स्टेट्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जो 900 से भी कम लड़कियां पैदा हो रही हैं हर 1,000 लड़कों के।
वजह क्या है? क्या कानून पर्याप्त नहीं है, या केवल कानून काफी नहीं है और ज्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है?
दुनिया भर में देखा गया है कि कानून के बावजूद ये कुप्रथाएं प्रचलित हैं, इनसे जूझने के लिए और कई पैमानों पे जरूरत है प्रयासों की, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के समानता पे आधारित जो सामुदायिक जागरूकता है उसकी जरूरत है। ये एक मूल्य और इस विवेक का स्थापित होना कि महिलाएं या लड़कियां किसी भी पुरुष या किसी भी लड़के से कम नहीं है और उनका भी समान अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र ने तमाम लोगों से आग्रह किया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जो सामाजिक दूरी जैसे उपाय अपनाए हैं, उसी तरह के उपाय सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी अपनाएं और कोई भी सामग्री आगे बढ़ाने यानी शेयर करने से पहले ठहर कर उसके बारे में सावधानी से सोचें। संयुक्त राष्ट्र के सूचना अभियान वेरीफाइड इनिशिएटिव की तरफ से ये नया संदेश है, जिसमें दुनिया भर के लोगों से कहा गया है कि वो भावनात्मक रूप से भड़काऊ या गंभीर सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले गहराई से सोचें। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कम्युनिकेशंस विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान की प्रभारी अवर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग का कहना है कि झूठी जानकारी व दुष्प्रचार जिन तरीकों से फैल रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि लोग किस तरह इसे आगे बढ़ा रहे हैं यानी शेयर कर रहे हैं। पॉज यानी ठहराव अभियान सोशल मीडिया दिवस के मौके पर जारी किया गया है। पॉज अभियान के पीछे ये विचार है कि कोई सामग्री या संदेश शेयर करने यानी आगे बढ़ाने से पहले खूब सोच विचार करें। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इस संदेश को अपने दिमाग में रखें और इससे लोगों के निजी बर्ताव में बदलाव आने की उम्मीद जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजोले ने भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की पुकार लगाई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 19 जून को दो हमलावरों ने शुभम मणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
शुभम मणि त्रिपाठी हिंदी दैनिक कंपुमेल के लिए उन स्थानीय जमीन विवादों की रिपोर्टिंग कर रहे थे जिनमें अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 19 जून को वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे, तभी दो हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम मणि त्रिपाठी ने इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रकाशित अपने संदेशों में रिपोर्टिंग के कारण बदले की कार्रवाई से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। यूएन एजेंसी की प्रमुख ऑड्री अजोले ने अपने बयान में शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या की निंदा की है। उन्होंने प्रशासन से इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने का आग्रह किया। यह उन अपराधियों को रोकने के लिए जरूरी है जो बंदूक की नोक पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में लापता मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खटक के बारे में सरकार द्वारा जानकारी सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है, लेकिन 7 महीने से भी पहले उनके अचानक जबरन गायब होने की घटना की कड़ी निंदा भी की है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खटक को आखिरी बार 13 नवंबर 2019 को तब देखा गया था जब सुरक्षा एजेंटों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी इंटरचेंज इलाके के पास उनकी कार को रोका था। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर प्रतिष्ठा जैन।
16 जून 2020 को पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खटक देश में ही कानून एजेंसियों की हिरासत में है, लेकिन उनका तभी से बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं है। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि इदरीस खटक को 7 महीने से ज्यादा समय पहले जबरन गायब किया जाना उनके काम काज पर असहनीय हमला है।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।